आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अन्विता कुमारी और हम पढ़ रहे थे आपकी पुस्तक का पाठ दो, जॉर्ज पंचम की नाक। ये कमलेश्वर जी की लिखी हुई एक कहानी है जिसमें उन्होंने व्यंग किया है हमारी भारत की उपनिवेशिक व्यवस्था, उपनिवेशिक सोच पर, कि जैसे हमारा भारत देश जो है वो आज़ाद होने के बाद भी विदेशों के जो आकर्षण हैं, उनकी गुलामी है, इन सब चीज़ों से वो छूट नहीं पाया है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कमलेश्वर जी की इस कहानी में, कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय, रानी जो है लंदन की, वो भारत आने वाली हैं और इस वजह से हर जगह अखबारों में बस यही छप रहा है कि क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, रानी कैसे पोशाक पहनेंगी, कैसे आएंगी, कहाँ रुकेंगी, क्या खाएंगी, सब कुछ बस उन्हीं के बारे में खबरें चल रही हैं। तो इस तरह से कमलेश्वर जी व्यावसायिक पत्रकारिता, यानी कि ये जो पत्रकारिता है ये सिर्फ पैसे के लिए की जा रही है, स्वार्थ के लिए की जा रही है, लोगों को सही जानकारी या क्या सही खबरें पहुंचनी चाहिए इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, इस पे भी कमलेश्वर जी ने एक व्यंग किया है। तो हमने पढ़ा था कि जैसे हर जगह तैयारियां हो रही हैं, नई दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है उसे सजाया जा रहा था, है ना, सड़कें साफ की जा रही थी, बड़ी बड़ी इमारतों की, बिल्डिंगों की पेंटिंग हो रही थी, उन्हें सजाया जा रहा था, लाइटें लग रही थी हर जगह, मतलब शहर को पूरी तरह नया कर रहा जा रहा था, जैसे एक नई दुल्हन को सजाते हैं, उसका श्रृंगार करते हैं, वैसे ही नई दिल्ली को भी सजाया जा रहा था। लेकिन मसला क्या हो जाता है कि वहां पर मौजूद एक जॉर्ज पंचम जी की जो मूर्ति लगी होती है उसकी नाक कोई रातों रात तोड़ के चला जाता है। तब सब लोग ये सोचते हैं कि अगर रानी आई और यहाँ नाक नहीं मिली उन्हें तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, भारत देश के लिए ये बहुत बुरा हो जाएगा कि हमने जॉर्ज पंचम की नाक नहीं बचा पाए, क्योंकि नाक बचाना क्या होता है, इज्जत बचाना, मुहावरा होता है ना ये। तो इधर उधर सरकारी दफ्तरों में सारे जरूरी काम छोड़कर बस यही हल्ला मचा होता है कि कैसे हम इस मूर्ति की नाक को लगवाएं। जैसे तैसे वो एक मूर्तिकार को बुलवाते हैं, लेकिन मूर्तिकार उनसे आके बोल देता है कि मैं ये नाक लगा तो दूंगा लेकिन मुझे इसके लिए सब जानकारी चाहिए, सब पता होना चाहिए कि मूर्ति कब बनी थी, कहाँ बनी थी, इसके लिए कैसे पत्थर का इस्तेमाल किया गया, वो पत्थर कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें अगर मुझे पता चल जाएंगी तभी मैं सही से इसको लगा पाऊंगा, सही नाक बना पाऊंगा। तो सब लोग फिर से, जो सरकारी अफसर थे या क्लर्क थे, वो सब फिर से दुखी हो जाते हैं कि कहाँ से इसको पता लगाएं, क्योंकि पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, जो पुरानी चीज़ों की जानकारी रखता है, उसकी फाइलों में अब ये सब कुछ भी नहीं बचा था। तो इसके लिए एक नई समिति का, एक कमिटी का गठन किया जाता है जिनको जिम्मेदारी दी जाती है कि जैसे भी तुम्हें इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके ये नाक लगवानी है और अब ये सिर्फ तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, है ना। हमने इतना पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 13 से। तो पेज नंबर 13 पर पैराग्राफ सेकंड से शुरू करते हैं। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमिटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं, हर चीज देश के गर्भ में छिपी है, जरूरत खोज करने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी, इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला जमाना खुशहाल होगा। ये छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। अब क्या होता है, जब मूर्तिकार को दोबारा बुलाया जाता है तो वो क्या कहता है, मामले को सुलझा देता है, हल कर देता है मसला, यानी मामले को सुलझा देता है और कहता है, अगर आप लोग पता नहीं लगा पा रहे हैं कि कैसा पत्थर इसके लिए इस्तेमाल किया है मूर्ति के लिए, तो परेशान मत होइए, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमूंगा, हर पहाड़ पे जाऊंगा, हर जगह जाऊंगा और वहां से ढूंढ कर लाऊंगा ऐसा ही पत्थर। तो जो कमेटी के सदस्य थे सब खुश तो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता, मतलब ये नहीं सोच पा रहे हैं वो कि इतनी जल्दी वो सारे पहाड़ों पे कहाँ से जाएगा, कहाँ से ढूंढ लाएगा। लेकिन बस वही दिखाया गया कि कैसे सरकारी व्यवस्था में बढ़ चढ़ के बातें की जाती हैं। और जब उनके जो चेयरपर्सन जो सभापति होता है वो चलने लगा तो खुश होकर क्या कहता है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में नहीं मिल सकती। इस देश के गर्भ में सब कुछ छुपा हुआ है, बस खोजने की, उसे ढूंढने की जरूरत है, जिसके लिए मेहनत करनी होगी। मेहनत का फल मिलेगा और हमारे आने वाला जमाना, आने वाले लोग, हमारा ये आगे का समय अच्छा और खुशहाल बन जाएगा। ये जो उनकी बातें थी, ये तुरंत भाषण, ये संवाद उनके तुरंत छप गए अखबारों में कि देखिए सभापति ने कितनी अच्छी अच्छी बातें कही, कितने हमारा देश महान है, लोग कितने महान है, सारी बातें तुरंत छप गई। अब मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिलता। यह पत्थर विदेशी है। अब क्या हुआ, जो मूर्तिकार था वो फिर भी जो पहाड़ी प्रदेश है, जहाँ पहाड़ है भारत के, उन जगहों पे वो घूमकर आ जाता है, इधर उधर ढूंढता है, लेकिन उसे आखिरकार हताश होकर लौटना पड़ता है, निराश होना पड़ता है, और बस दुखी होकर, उदास होकर वो ये बता देता है, मैंने हर जगह ढूंढा, चप्पा चप्पा ढूंढा, यानी कोना कोना ढूंढ लिया, लेकिन मुझे ऐसा पत्थर नहीं मिला। ये हमारा हमारे देश का नहीं, विदेश का पत्थर है। अब सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर, विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके के रहन सहन, जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। अब क्या बोलते हैं, जो सभापति थे वो तैश में आ जाते हैं, यानी गुस्से में आ जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं मूर्तिकार से, लानत है आपकी अकल पे, यानी कि आपको बिल्कुल अकल ही नहीं है, विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, उनके जैसा दिल दिमाग, सोचने का तरीका, रहने का तरीका, खाना पीना, रहन सब कुछ हम उनके जैसा कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, लेखक जो कमलेश्वर जी हैं, उन्होंने बहुत ही तगड़ा व्यंग किया है, क्या कि हम सारी चीजें विदेशों की ही अपना चुके हैं। वाकई में ये बात सच है कि हम अपने देश की संस्कृति को खोकर दूसरे देश की, विदेशों की संस्कृति को अपना रहे हैं। और फिर वो कहता है, जब हम सारी चीजें अपना चुके हैं, बाल डांस, बाल डांस क्या, जो बॉल डांस होता है ना, विदेशी डांस का एक तरीका है, जब हम उसको भी यहाँ पे कर लेते हैं, तो क्या विदेशों का कोई पत्थर यहाँ नहीं मिल सकता, हम इतनी सी चीज नहीं अपना सकते। तो आगे देखिए, मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुंचे। अब मूर्तिकार को एक आइडिया आता है, एक उपाय सूझता है। वो क्या कहता है, मैं एक बात आपको कहूंगा, लेकिन बस इसी शर्त पे कि अखबार वालों पे ये बात ना पहुंचे, मतलब अखबार में ना छपे, जनता को ना पता चले, हमारे बीच में जितने लोग हम यहाँ मौजूद हैं, हमारे बीच में ये बात रहनी चाहिए। सभापति की आंखों में भी चमक आ गई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझें, तो मेरा मतलब है, तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। अब देखिए, मूर्तिकार क्या क्या उपाय देता है कि सब दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, कि बात हमारे बीच रहनी है, तो कहता है, इस देश में जॉर्ज पंचम के साथ और भी तो कई महान नेता हैं हमारे, जो देश के रहे हैं, उनकी मूर्तियां बनी हुई हैं, उनमें से जिस मूर्ति की नाक इस पे सही बैठ रही होगी, सही फिट आ रही होगी, वो हम इस पे लगा देते हैं, अगर आप लोगों को ठीक लगे। देखिए यहाँ पे आप ये देखिए, हमारे देश के जो लोग हैं, हम अपनी संस्कृति को, अपने लोगों की इज्जत का ख्याल नहीं कर रहे हैं, उनकी नाक काटने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक विदेशी व्यक्ति जॉर्ज पंचम की नाक हमें लगानी है अपना, क्योंकि रानी एलिजाबेथ के सामने हमें झूठा दिखावा करना है, झूठी शान दिखानी है। ठीक है, ये देखिए क्या सोच है, कितनी विकृत सोच है। सबने सबकी तरफ देखा, सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। अब क्या हुआ, सबने एक दूसरे की तरफ देखा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आखिरकार ये तय हो गया कि हाँ चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। लेकिन उसने क्या किया, एक आदेश दिया, चालाकी से करने को कहा ये काम, बहुत ही होशियारी से, इन चालाकी से ऐसे करना कि ये बात किसी को पता ना चले कि यहाँ की नाक उठाकर वहां लगा दी गई है। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बंबई पहुंचा। दादाभाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावस जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। देखिए अब क्या हुआ, वो फिर से पूरे भारत में घूमता फिर रहा है कि जितने भी महान नेता, महान लोग हुए हैं, उनकी मूर्तियों की नाक को नाप सके कि जो जॉर्ज पंचम की नाक से मिलती हुई जिसका साइज होगा, आकार होगा, वही नाक हम लगाएंगे। तो वो पहले, सबसे पहले कहाँ जाता है? दिल्ली से मुंबई, बम्बई जिसे पहले कहा जाता था वहां जाता है। अब वहां के जितने भी प्रसिद्ध लोग, प्रसिद्ध नेता हुए हैं, उनके दादा भाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी, बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी, कावस जी, जहांगीर, सबकी नाके वो टटोलता है, यानी देखता है, नापता है, आकार देखता है कि किसकी सही बैठ रही है, नहीं बैठ रही। जब वहां कुछ नहीं मिलता तो अब वो गुजरात की ओर जाता है। ठीक है, अब वो गुजरात की ओर भागा। नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 14। गांधी जी, सरदार पटेल, विदुल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राममोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोक की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों के भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्ति दिखाया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। देखिए क्या होता है, वो बंबई के जो महान लोग हैं वहां जाता है, फिर गुजरात के जो महान लोग हैं, है ना, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई, बंगाल के रविंद्रनाथ जी, सुभाष चंद्र बोस जी, बिहार, मैसूर, साउथ में जाता है, यूपी माता, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मदन मोहन मालवीय, सब लोगों की नाकें नापता है। लेकिन किसी का भी नाप जो है वो जॉर्ज पंचम की नाक से मेल खाता हुआ नहीं मिलता। तो आखिर उसे वापस दिल्ली आना पड़ता है। वो फिर से निराश लौटता है और दुखी होकर, उदास होकर फिर से सबको बताता है कि मैंने सबकी नाक का नाप लिया, लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक के नाप का कुछ भी नहीं मिला। सबकी नाकें जो हैं वो बड़ी निकली। देखो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से क्या दिखा दिया है कमलेश्वर जी ने, कि हमारे देश के जो नेता हैं, जो लोग थे, उनकी नाक यानी उनका सम्मान जो है वो बड़ा है किससे? जॉर्ज पंचम से। हमें इस बात को समझना चाहिए कि उनका सम्मान, उनकी नाक, क्योंकि नाक ना प्रतिष्ठा या सम्मान का ही एक प्रतीक होती है, सूचक होती है ना, शुरू में ही लेखक ने बता दिया था। तो वही वो कह रहे हैं कि हमारे देश के जितने भी लोग थे, सबकी नाक बड़ी निकली, यानी जॉर्ज पंचम की नाक छोटी है, यानी इतनी छोटी सी नाक के लिए हम अपने इतने बड़े बड़े महान लोगों की नाक काटने चले थे। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाणस बधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटरीट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं, शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कई बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? क्या होता है, देखिए, जब ये सब सुन के सब हताश हो जाते हैं, परेशान होते हैं, झुंझलाने लगते हैं, एक दूसरे पे क्रोध दिखाने लगते हैं, गुस्सा करते हैं, तो मूर्तिकार क्या बोलता है कि मैंने सुना था कि बिहार सेक्रेटरीट के सामने सन 42 में हमारे देश के कुछ बच्चे थे। सोचिए, छोटे छोटे बच्चे थे, आप लोग जितने, आप लोगों से भी छोटे बच्चे, वो भी देश के लिए शहीद हो गए थे, कुर्बान हो गए थे, तो उनकी जो मूर्तियां बनी हैं, देखिए कितना नीच हो चुका है आदमी कि वो उनके पास भी जाता है कि उनकी नाक तोड़ के इस मूर्ति पे लगा दी जाए, क्योंकि नाक छोटी है जॉर्ज पंचम की, तो शायद बच्चों की नाक फिट हो जाए। लेकिन जब वहां पहुंचता है तो उन बच्चों की नाक भी बड़ी निकलती है, यानी कि उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है, इतने महान बच्चे थे कि उनका सम्मान भी जॉर्ज पंचम से अधिक है, उनकी नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है। तो अब बताइए मूर्तिकार अब कहता है मैं क्या करूं, ऐसा कोई है ही नहीं जिसकी हमारे देश में इतनी छोटी नाक मिले। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। अब क्या हुआ, जो राजधानी यानी जो दिल्ली है उसमें सारी तैयारियां पूरी थी, शहर की काया पलट कर दी गई थी, शहर को एक नया रूप दे दिया गया था। जॉर्ज पंचम की लाट यानी जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति वहां लगी थी, उसे खूब मलमल कर नहलाया गया, यानी उसे उसकी बहुत अच्छे से सफाई करी, उसे धोया गया, नया रंग रोगन, नया तरीके से उस पर पेंट किया गया, उसको सजाया गया, सब कुछ था, लेकिन उसकी नाक नहीं थी, जो कमी बार बार सबको खटक रही थी। बात फिर बड़े हुकूमत तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक ना लग गई, ना लग पाई, तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब, यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। अब बड़े बड़े हुक्काम यानी बड़े लोग जो हुक्म देने वाले हैं, जो आदेश देने वाले हैं, बड़े अफसर हैं, उन तक ये बात पहुंचती है तो क्या होता है, सब लोग क्या कहते हैं कि सब कुछ होते हुए भी अगर जॉर्ज पंचम की नाक नहीं लग पाई तो हम रानी का स्वागत करके क्या कर लेंगे। यानी हम अपने आप को उनके सामने कितना भी अच्छा दिखा लें, कितना भी महान दिखा लेंगे, पर इस नाक ना होने की वजह से हमारी नाक कट जाएगी, यानी हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारे पूरे देश का सम्मान घट जाएगा। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमिटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। अब देखिए, सोच जो है सबकी, वो धीरे 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 कितनी नीची होती जा रही है, कितनी गिरती जा रही है। मूर्तिकार क्या कहता है, देखिए व्यंग एक और है पहली ही लाइन में। मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। मतलब क्योंकि वो गरीब है तो वो पैसे के लिए, झूठी शानो शौकत के लिए वो कुछ भी करेगा, कि कैसे भी करके इन बड़े अफसरों का सरकारी काम अगर मैं कर दूं तो मुझे इसके लिए पैसे मिल जाएंगे। इसलिए वो कुछ भी तरीके से, कुछ भी करके, साम दाम दंड भेंट हर तरीके से, बस वो ये नाक लगाना चाहता था, ये काम पूरा करना चाहता था। तो अब उसने क्या हुआ, एक और उसके में हैरत अंगेज करने वाला, यानी कि एक चौंका देने वाला उसके में ख्याल आता है दिमाग में, तो फिर से पहले वाली शर्त दोहराता है। पहले वाली शर्त यानी कि मैं आपको सुझाव तो दूंगा, लेकिन मेरा ये जो सुझाव, ये जो आइडिया है, ये बाहर अखबारों तक ना पहुंचे। तो इसीलिए जिस जगह मीटिंग हो रही थी वहां के कमरे फिर बंद किए गए। और फिर उसने क्या किया, सबसे अकेले में क्या बोला, 40 करोड़। यानी उस समय जो हमारे भारत की जनसंख्या थी, अब तो 130 करोड़ हो गई है, उस समय वो 40 करोड़ थी, कि 40 करोड़ जिंदा लोग जो हैं, इनमें से किसी एक की नाक काट कर लगा दी जाए तो। यानी सिर्फ एक मूर्ति की नाक लगाने के लिए, एक झूठी शानो शौकत दिखाने के लिए, रानी के सामने एक झूठा दिखावा करने के लिए, उनकी मूर्ति की इज्जत बचाने के लिए किसी जीवित व्यक्ति की नाक काट के लगा दी जाए। सोच सकते हैं आप लोग कितना नीच ख्याल है, कितना बिल्कुल अमानवीय ख्याल है ये। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं, यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपको सिर्फ इजाजत चाहिए, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। अब देखिए क्या होता है, ऐसी बात सुनकर 1 मिनट के लिए सन्नाटा छा जाता है, एकदम शांति हो जाती है, सब शांत हो जाते हैं, बिल्कुल चुप बैठ जाते हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करें, एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तो जो मूर्तिकार होता है ना, वो थोड़ा सा हिचकिचाता है, थोड़ा सा चौंकता है, आश्चर्य दिखाता है, फिर कहता है, आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं, इतना बड़ा काम नहीं है, काम तो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, नाक चुनना मेरा काम, मतलब मैं चुनूंगा कि मूर्ति के लिए कौन सी नाक सही है या किस व्यक्ति की नाक सही होगी, वो नाक लाना मेरा काम है, आपकी तो सिर्फ इजाजत चाहिए। यानी आपको तो बस एक इजाजत देनी है, अनुमति देनी है, बस हमें परमिशन दे दीजिए, नाक ले आए, फिर हमें जिसकी सही नाक लगेगी मूर्ति के हिसाब से उसकी नाक मैं ले आऊंगा। अब कानाफूसी हुई एक दूसरे के कान में, लोगों ने बात की क्या सही है क्या गलत है, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस सब के बाद आखिरकार मूर्तिकार को इजाजत दे दी, यानी अनुमति दे दी कि हाँ तुम्हें जिसकी सही लगे उसकी नाक काट कर ले आओ। अब पेज नंबर 15 पर आ जाइए आप लोग। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। अब अखबारों में मीडिया में बाहर ये पूरी बात तो नहीं जा सकती थी ना कि क्या योजना बनाई गई है, कितनी नीच योजना बनाई गई है। तो अखबारों में क्या हुआ, सिर्फ एक मुख्य हेडलाइन छपी, क्या कि जो मसला था, जो परेशानी हो रही थी कि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है, ये मामला हल हो गया है, सुलझ गया है, और अब जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति की नाक नहीं थी वो लग जाएगी, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके आगे कुछ भी नहीं छपा कि कैसे लगेगी, कब लगेगी, कुछ भी नहीं, बस इतना छपा कि हाँ मामला सुलझ गया है, नाक लग जाएगी, मतलब लग जाएगी। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया, उसकी रवाब निकाली गई और ताजा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमिटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। अब क्या हुआ, जब नाक लगने की तैयारी हो रही थी तो फिर से वहां पे हथियार लेके पहरेदारों को खड़ा किया गया। पहरेदार लगवाए गए कि आसपास कोई ना देखे कि क्या काम हो रहा है। मूर्ति के आसपास एक तालाब था, उसको सुखाया गया। क्यों? क्योंकि अगर नमी बनी रहती, पुराना पानी बन रहता, तो जिंदा आदमी की नाक यानी जिंदा अंग सूख जाता, सड़ जाता, उसमें से बदबू आने लगती। तो किसी को पता ना चले वो जो जिंदा नाक है, असली की नाक है, वो सूख ना जाए, इसलिए वहां ये सारी तैयारियां हो रही थी। किसी को खबर नहीं थी, जनता को कुछ नहीं पता था कि नाक लग तो रही है पर किसकी लग रही है, क्या वो जिंदा आदमी की लगेगी या मरे हुए आदमी की, या फिर किसी मूर्ति की, या मिट्टी की, या पत्थर की, किस चीज की नाक, ये किसी को नहीं पता था। सारी तैयारियां भीतर भीतर यानी अंदरूनी तौर पर चल रही थी, अंदर अंदर सारे लोग भारत के ये कर रहे थे, वो भारत की सरकारें, अफसर ये सारे काम कर रहे थे। अब वो दिन आने वाला था जब रानी पहुंचने वाली थी, लेकिन मूर्तिकार जो था वो परेशान हो रहा था कि मैंने ऐसा उपाय तो सुझा दिया, ऐसी योजना तो बता दी है, लेकिन ये मैं पूरी कैसे करूंगा। इसीलिए जिंदा नाक लगाने के लिए उसने और भी मदद मांगी, कुछ और भी चीजें कहीं कि ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। सारी मदद हर तरीके की जो भी उसे चाहिए थी, सारी मदद प्रदान की गई, लेकिन उसे ये हिदायत दी गई, आदेश दिया गया, साफ तौर पर समझाया गया कि एक दिन तय किया कि इस दिन तक तुम्हें नाक लगा देनी है, चाहे कैसे भी करके लगाओ। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। आखिर वो दिन आ गया, यानी जो दिन तय किया गया था कि इस दिन मूर्ति के नाक लग जानी चाहिए, मूर्ति की नाक लग जाएगी, उस दिन वाकई में जॉर्ज पंचम के नाक लग गई, यानी मूर्ति की नाक लग गई। और अखबारों में अब क्या खबरें छपने लगी, हर जगह बस जॉर्ज पंचम की नाक का चर्चा हो रहा था कि मूर्ति की नाक लग गई है, वो भी जिंदा नाक, यानी ऐसी नाक जो है तो नकली लेकिन पत्थर की नहीं लगती, बहुत ही सुंदर नाक लगी है। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी, उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुध के लिए। अब देखिए क्या चीज गौर करने वाली बात थी अखबारों में, कि उस दिन और कोई घटना नहीं छपी थी, यानी कहीं देश में कोई उद्घाटन नहीं हुआ, कोई समारोह नहीं हुआ, कोई सार्वजनिक सभा जहां लोग इकट्ठे हुए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी का स्वागत नहीं हुआ, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, किसी के चित्र ही नहीं छपे, सारे अखबार खाली थे, ऐसा क्यों हुआ, नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी ना, और वह भी बुध के लिए, यानी सिर्फ एक, बुध क्या होता है, पुतला, ठीक है, बुध का मतलब होता है पुतला, तो वो कह रहे हैं नाक तो बस एक चाहिए थी, वो भी सिर्फ एक पुतले के लिए, एक मूर्ति के लिए, लेकिन इसके लिए सारी जनता कहाँ गायब हो गई, कहाँ गई, यानी कि आप समझ रहे हैं, पूरी जनता के साथ प्रयोग किया गया था कि किसकी नाक कहाँ कैसे लगाई जाए, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आपका जो पाठ है जॉर्ज पंचम की नाक, वो पूरा हो जाता है। तो कमलेश्वर जी का ये जो एक कमलेश्वर जी की जो कहानी हमने पढ़ी, कितनी सुंदर तरीके से इन्होंने दिखाया कि एक मूर्ति की नाक के लिए, है ना, मूर्ति की इज्जत बचाने के लिए, अंग्रेजों के सामने अपने झूठा दिखावा करने के लिए हमने किस हद तक, हमारे जो देश के लोग थे वो किस हद तक नीचे गिर जाते हैं, सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, है ना, बाकी सारे जरूरी काम छोड़ दिए गए, हमारे देश के विकास के लिए और कोई क्या जरूरी काम है, सब नहीं, इन सब पे कोई डिस्कशन नहीं चल रहा, कोई चर्चा नहीं हो रही है, सिर्फ ये बात चल रहा है, यही बात सबके दिमाग में है कि मूर्ति की नाक कैसे लगेगी, यानी कि रानी एलिजाबेथ के सामने हम अपने शान का झूठा दिखावा कैसे कर सकेंगे, कैसे सब समझा सकेंगे। तो यहाँ आपका पाठ पूरा होता है, इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो मैं आपको अगले ऑडियो में करवाऊंगी, लेकिन पहले जैसे हमने पाठ की थोड़ी सी समरी देख ली, ऐसे ही लेखक के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, तो उनका जीवन परिचय भी आपको पता होना चाहिए। ये परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा आगे के जीवन में काम आता है, अगर आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो आगे आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए मैं फिर से एक बार वो रिपीट कर दे रही हूँ। ठीक है, कमलेश्वर जी ने लिखी थी ये कहानी। इनका जन्म कब हुआ था? 1932 में, यानी 1932 में, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में। मैनपुरी एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहीं इनका जन्म हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी, फिर इन्होंने दूरदर्शन में नौकरी की, बहुत से समाचार पत्र और पत्रिकाओं का संपादन किया, जैसे सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर। ठीक है, ये जो दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण अखबार हैं, ये आज भी काफी प्रसिद्ध और प्रचलित अखबार हैं। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण जैसे पुरस्कार, जो हमारे देश के बहुत ही सम्मानित और सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक माने जाते हैं, ये मिल चुके हैं। और फिर 27 जनवरी 2007, यानी 27 जनवरी 2007 में इनका निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई थी। कैसे हुई थी? इनको दिल का दौरा पड़ गया था। ये जो नई कहानी के नई कहानी आंदोलन हुआ था, कहानी के जब तरीकों में बदलाव आ रहा था, नई नई कहानी लिखी जा रही थी, उसके आंदोलन में जो सबसे प्रमुख लोग रहे थे उसमें कमलेश्वर जी भी थे। इनकी कुछ मुख्य रचनाओं के नाम सुन लीजिए, जैसे पहले कहानी संग्रह जो है पहले वो बताती हूँ, फिर इनके उपन्यास बताऊंगी। कहानी संग्रह है राजा निर्बंसिया, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे। ठीक है, ये इनके कहानी संग्रह हैं। और वही इनके उपन्यास हैं वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान। ठीक है, ये जो इन्होंने कहानी उपन्यास जैसी विधाएं लिखी हैं मुख्यतः, लेकिन इसके साथ इन्होंने आत्मकथा भी लिखी है। ठीक है, यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, संस्मरण लिखे हैं। साथ ही आप को एक बड़ी चीज ये बताऊं कि जो हम टेलीविजन देखते हैं ना, टीवी, इसमें जो प्रोग्राम्स आते हैं या फिर जो फिल्में आती हैं, ऐसे कई प्रसिद्ध प्रोग्राम नाटक रहे हैं या बहुत सी प्रसिद्ध फिल्में रही हैं जिनकी पटकथाएं, जिनकी स्टोरीज कमलेश्वर जी ने लिखी हैं। और कमलेश्वर जी अक्सर ऐसी चीजें लिखते हैं जिसमें महानगरीय सभ्यता, यानी जो शहरों का शहर बढ़ रहे हैं उसकी वजह से जो व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है, या जो उसके आचरण में जो बदलाव आया है, उसके व्यवहार में, ये सारी चीजें काफी अच्छे तरीके से लिखी होती हैं। और वही हमने फिर जॉर्ज पंचम की नाक में क्या पढ़ा, कि जो सोच है व्यक्ति की नीची हो चुकी है, हम उपनिवेशिक सोच से अभी निकल नहीं पाए हैं, विदेशों का आकर्षण हमें खींचता है, अपने देश से ज्यादा जरूरी हमारे लिए विदेशों की चीजें, विदेशों की इज्जत हो गई है, हमने अपनी देश की संस्कृति चीजें छोड़ दी हैं और विदेशी संस्कृति अपनाने लगे हैं। पत्रकारिता व्यावसायिक हो रही है, यानी कि लोगों को सही जानकारी पहुंचाने के बजाय सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम किया जा रहा है, चमक दमक का दिखावा किया जा रहा है। ठीक है, यही सारी चीजें हमने पढ़ी। प्रश्नोत्तर हम अगले ऑडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।